13 भारतवर्ष में सूफी मत का प्रवेश तथा भारतीय परिपार्श्व में सूफी मत। भारतवर्ष में सूफी मत के प्रवेश की निश्चित तिथि बताना कठिन है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि मुसलमानों के आक्रमण के तुरंत बाद से ही सूफी साधकों का यहाँ आना जाना प्रारंभ हो गया। भारतवर्ष के साथ अरब देशों के संबंध का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। पहले पहल इन सूफी साधकों का पता सिंध, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में चलता है, लेकिन बाद में संपूर्ण देश उन सूफी साधकों से परिचित हो गया। ईसा की 16वीं शताब्दी के एक मुसलमान इतिहास लेखक के अनुसार प्रथम मालाबार में मुसलमान तीर्थयात्रियों का एक दल आया जो सिलोन में आदम के पाद चिन्ह का दर्शन करने जा रहा था। इस दल का नेता शेख शरफ बिन मालिक था, जो करंगनोर मालाबार के राजा को धर्मोपदेश द्वारा मुसलमान बनाने में सफल हुआ। लोगों का विश्वास है कि यह घटना हजरत मोहम्मद के जीवन काल की है और बहुतों का ख्याल है कि ईसा की 9वीं शताब्दी की यह बात है। प्री ई पृष्ठ 264-65। वैसे इसका कोई प्रमाण नहीं पाया जाता, फिर भी इससे इतना पता तो अवश्य चलता है कि धर्म प्रचार के उद्देश्य से इस देश में मुसलमान बहुत पहले से आने लगे थे। भारतवर्ष में इस्लाम धर्म का प्रवेश सन 711 ईस्वी में हो चुका था, जब बसरा के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के आदेश से अरबी जनरल इमामुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम सिंध में अपनी फौजों के साथ आ घुसा और पंजाब में मुल्तान तक के प्रदेश को जीत लिया। उसके पहले मुहालिब के आक्रमण की भी बात कही जाती है। कहा जाता है कि वह सन 664 ईस्वी में मुल्तान तक बढ़ आया था। वैसे अल बालाधुरी का कहना है कि वह लाहौर तथा पृष्ठ संख्या 405 बन्नू तक पहुंच गया था। ग्लोपंट्रा का खंड 1 पृष्ठ 489। सिंध और पंजाब का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा सन 871 तक उमैया और अब्बासी खलीफों के हाथ में रहा और उसके बाद सिंध स्वतंत्र हो गया। अरब इतिहास लेखक मसूदी सन 915 ईस्वी में अमीर इस्माइल का जिक्र करता है। मसूदी ने बतलाया है कि उसका राज्य मुल्तान से खुरासान तक फैला हुआ था और वह अरब जाति का था। कहा जाता है कि उसने सन 900 ईस्वी में उन प्रांतों को अपने अधिकार में किया था। मुल्तान में वह एक सूर्य मंदिर का जिक्र करता है जिससे अमीर को काफ़ी आय होती थी। हिंदू तीर्थयात्री बराबर वहां आया करते थे। मुल्तान के सूर्य मंदिर की चर्चा इब्न हौकल भी करता है। सन 976 ईस्वी तक उस सूर्य मंदिर का पता चलता है। सन 985 ईस्वी में करमतियों ने आकर इस मंदिर को तोड़ फोड़ डाला। वे करमती स्वयं मिस्र और इराक से भगाए गए थे। इन्हें सनातन पंथी इस्लाम ने धर्म विरोधी कहकर इन पर अत्याचार करना शुरू किया था। दक्षिण भारत में अरब व्यापारियों का दल बहुत पहले से ही आने जाने लगा था। कहा जाता है कि जमोरिन का व्यापार अरब देशों के साथ बहुत चलता था, इसलिए उसने हिंदुओं के मुसलमान बनने में काफ़ी सहायता पहुंचाई, क्योंकि उसे नाविकों की ज़रूरत थी और उसके लिए मुसलमान बहुत उपयुक्त थे। अतएव उसने कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की कि प्रत्येक मछुआ परिवार का एक या अधिक पुरुष मुसलमानों की तरह से पाला पोसा जाए। प्री ई पृष्ठ 265-66। दक्षिण भारत की एक मुसलमान जाति रवुत्तन है, जो सईद नथर शाह सन 969 ईस्वी सन 1039 ईस्वी के प्रति बहुत बड़ा सम्मान प्रदर्शित करती है। आज भी त्रिचनापल्ली में मुसलमान उनके मकबरे का दर्शन करने जाते हैं। रवुत्तन तमिल भाषी प्रांत में पाए जाते हैं। अधिकांश में वे मदुरा, तिन्नेवेली, कोयम्बटूर, उत्तरी अर्काट और नीलगिरी अंचल में वास करते हैं। पृष्ठ संख्या 406। दक्षिण भारत की एक दूसरी मुसलमान जाति है, जो दूदे कुल के नाम से प्रसिद्ध है। दूदे कुल धुनिया और बुनकर का पेशा करते हैं। उनका कहना है कि बाबा फखर अल दीन के प्रभाव से वे मुसलमान बने। बाबा फखर अल दीन का मकबरा पेनुकोंडा में है। कहा जाता है कि वे सिस्तान के राजा थे और अपने भाई को राजपाट सौंप कर फकीर हो गए थे। मक्का और मदीना की तीर्थ यात्रा के बाद उन्होंने पैगंबर को सपने में देखा। पैगंबर ने उन्हें भारतवर्ष में आने और धर्म प्रचार करने का आदेश दिया। वे त्रिचनापल्ली में नथर शाह के शिष्य हो गए। वहां से वे 200 साथियों के साथ धर्म प्रचार के उद्देश्य से निकल पड़े। कहा जाता है कि वे पेनुकोंडा में एक हिंदू मंदिर के पास ठहरे। वहाँ का राजा उनका वहाँ आना और रहना पसंद नहीं करता था, लेकिन उन्हें वहाँ से हटाने के लिए उसने ज़बरदस्ती नहीं की। यह देखने के लिए कि उसके पुजारी और मुसलमान फकीर में कौन अधिक आध्यात्मिक शक्ति वाला है, दोनों को बोरे में चूने के साथ भरकर बंधवा दिया और पोखरे में डलवा दिया। पुजारी तो डूब ही गया, लेकिन कहा जाता है कि बाबा फखर अल दीन शहर के बाहर एक पहाड़ी पर पाए गए। इसके बाद राजा मुसलमान हो गया और उसके साथ और भी बहुत से लोग मुसलमान हो गए। वह मंदिर मस्जिद में परिणत कर दिया गया। पृष्ठ 267-268। मुसलमानों की सैनिक विजयों के साथ इस्लाम का प्रचार भी यहाँ बढ़ा। सैनिक विजयों के साथ बहुत लोग तो जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए, लेकिन इनसे भी अधिक इस्लाम के प्रचार में धर्म प्रचारकों का हाथ रहा है, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से बहुतों को मुसलमान बनाया। सूफी साधकों के बहुत पहले से मुस्लिम धर्म प्रचारक मुस्लिम विजेताओं के साथ आए। इनमें अधिकांश ऐसे आए जिनका इन सैनिक विजयों से कोई मतलब नहीं था। उनका विश्वास था कि धर्म के प्रचार से उन्हें पुण्य लाभ होगा, लेकिन यह सही है कि सैनिक विजय और राजनीतिक परिस्थिति पृष्ठ संख्या 407 अगर मुसलमानों के पक्ष में नहीं होती तो धर्म प्रचारकों को न कोई सुविधा ही मिलती और न संभवतः सफलता ही। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने वालों का प्रभाव हिंदुओं पर नहीं पड़ा, लेकिन शांत और उदार सूफी साधकों ने उनके हृदय पर विजय प्राप्त करना आरंभ कर दिया। महमूद गजनवी के आक्रमण के 200 वर्षों बाद तक इस प्रकार के धर्म प्रचारकों के नाम बहुत अधिक सुनने को नहीं मिलते, लेकिन ईसा की 13वीं शताब्दी में तथा उसके बाद भी बड़े बड़े धर्म प्रचारकों, पीरों और सूफी साधकों के नाम सुनने को मिलते हैं। ईसा की 14वीं शताब्दी में इनका पूरा जोर रहा। धर्म प्रचारकों का यह वेग ईसा की 15वीं और 16वीं शताब्दी में बहुत कम हो गया और 17वीं शताब्दी में प्रायः लुप्त हो गया। सूफियों की उदारता, उनका संतों जैसा जीवन तथा भारतीय विचारधारा के साथ साम्य होने के कारण इन सूफी साधकों के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ी। वह करामातों का युग था। उन दिनों सिद्धों, तांत्रिकों एवं नाथ पंथियों का पूरा जोर था। सूफियों की करामातों की कहानियों से जनता का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ तथा हिंदू और मुसलमान दोनों द्वारा वे समान रूप से समादृत हुए। जहां तक पता चलता है, सन ईस्वी की 12वीं शताब्दी के अंत में प्रथम सूफी साधक अन्य मुस्लिम देशों से आए। बहुतों का कहना है कि संभवतः ईसा की 11वीं शताब्दी में ही सूफी चिंताधारा का प्रवेश भारतवर्ष में होने लगा था। कहते हैं कि शाह सुल्तान रूमी बंगाल में सन 1035 ईस्वी में आए। सैयद नथर शाह सन 1039 ईस्वी में आए। दक्षिण भारत में धर्म प्रचार करने वाले यही प्रथम समझे जाते हैं। ये साधक अपने देश में काफी ख्याति लाभ कर चुके थे। उनमें धार्मिकता, जीवन की सादगी, उदारता आदि पूर्व मात्रा में थी। इन कारणों से जनता का प्रिय भाजन बनने में उन्हें जरा भी कठिनाई नहीं हुई। उनका सादा सरल जीवन, सांसारिक विषयों के प्रति विरक्ति, धार्मिक कट्टरता के प्रति उदासीनता और सबसे बढ़कर उनके चमत्कारों की कहानियों ने हिंदू पृष्ठ संख्या 408 जनता को आकृष्ट किया। पहले पहल आने वाले धर्म प्रचारकों में शेख इस्माइल का नाम आता है। वह सन 1005 ईस्वी में लाहौर में आया था। कहा जाता है कि लाहौर में आने वाले इस्लाम के प्रचारकों में वही पहला प्रचारक था। पृष्ठ 280। उसमें खूब वाक्पटुता थी और अपने तर्कों द्वारा वह लोगों में विश्वास उत्पन्न कर सकता था। उसने बहुतों को मुसलमान बनाया। इसके बाद सन 1036 ईस्वी में अबुल हसन बिन उस्मान बिन अली अल हुजवीरी के लाहौर में आने का पता चलता है। वैसे हुजवीरी ने ऐसा लिखा है कि वह कैदी बनाकर वहां लाया गया था। कश्फ पृष्ठ 91। हुजवीरी बहुत बड़ा विद्वान था। उसने अपनी पुस्तक कश्फ अल महजूब में सूफी मत का सुंदर विवेचन किया है। वह स्वयं एक सूफी था। अबुल हसन अल हुसरी के शिष्य अबुल फजल मोहम्मद बिन अल हसन अल खुतली से उसने सूफी मत की शिक्षा ग्रहण की थी। बहुत से अन्य सूफी साधकों से अपने मिलने की बात उसने स्वयं लिखी है। उसने बहुत भ्रमण किया था। कहते हैं कि इस्लामी साम्राज्य के एक छोर से दूसरी छोर तक वह घूमा हुआ था। वह गजनी अफगानिस्तान का रहने वाला था और लाहौर में उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के ठीक साल का पता नहीं चलता। उसकी मृत्यु सन 1063 ईस्वी तथा सन 1072 ईस्वी के बीच किसी समय हुई। लोग उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। बहुत से सूफियों का यह विश्वास है कि अली अल हुजवीरी भारतवर्ष के संतों के ऊपर अधिष्ठित हैं और यद्यपि उनकी मृत्यु हो गई है, फिर भी कोई भी संत बिना उनकी आज्ञा के इस देश में नहीं प्रवेश करता। सूफी पृष्ठ 128। बाहर से आने वाले साधक उनके मकबरे का दर्शन सबसे पहले करते हैं, लेकिन 200 वर्षों बाद आने वाले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की तरह वह लोकप्रिय नहीं हो सका। वह दाता गंज बख्श के पृष्ठ संख्या 409 नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दिया हुआ है। यह पता नहीं चलता कि उसकी कोई शिष्य परंपरा थी या नहीं। वह सुन्नी था तथा सनातन पंथी इस्लाम को मानकर चलने वाला था। उसने सूफी मत तथा सनातन पंथी इस्लाम के बीच सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की है। ईसा की 13वीं और 14वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म प्रचारकों और सूफियों का पूरा जोर देश के कई भागों में रहा। पंजाब, कश्मीर, डेक्कन तथा देश के पूर्वी भाग में उन दो शताब्दियों में इनका कार्य पूरे जोश के साथ हुआ। पंजाब में बहाल हक पाक पत्तन के बाबा फरीदुद्दीन और अहमद कबीर के नाम सुनने को मिलते हैं। अहमद कबीर को लोग मखदूमे जहानिया भी कहते हैं। कहा जाता है कि ईरानी 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कश्मीर में सर्वप्रथम बुलबुल शाह ने सूफी मत का श्री गणेश किया। कश्मीर का प्रथम मुसलमान राजा सदरुद्दीन हुआ। बुलबुल शाह के प्रभाव में आकर वह मुसलमान बना और उक्त नाम को ग्रहण किया। 15वीं शताब्दी के अंत में मीर शमशुद्दीन नामक एक धर्म प्रचारक कश्मीर में आया और उसके प्रभाव में आकर वहां बहुत लोग मुसलमान बने। शमशुद्दीन शिया संप्रदाय का था और इराक से आया था। पृष्ठ 292। ईसा की 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब मोहम्मद गोरी ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया, कुछ बहावलपुर इस्लामी विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र था। सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ मिन्हाजे सराज उच्च स्थित फिरोजी कॉलेज का अध्यापक नियुक्त हुआ था। यही मिन्हाजे सराज बाद में जब उच्च का स्थान दिल्ली ले लिया, तब वहां चला गया और तीन तीन बार अलतमश के दरबार में काजी नियुक्त हुआ। ग्लॉ पंट्रा का पृष्ठ 490-491। उच्च उस काल में धर्म प्रचार का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जहां से सिंध और दक्षिण पश्चिमी पृष्ठ संख्या 410 पंजाब में इस्लाम धर्म का प्रचार हो रहा था। उस उच्च में बाद में कई सूफी साधक आए। उस काल के मुस्लिम साधकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनकी मृत्यु सन 1236 इंडी ई पृष्ठ 43 ईस्वी में अजमेर में हुई, जहां आज भी बहुत बड़ा मेला लगता है। इनका जन्म सीस्तान अफगानिस्तान में सन 1142 ईस्वी में हुआ था। जब ये तीर्थ यात्रा के लिए मदीना जा रहे थे, उसी समय उनके हृदय में जैसे भारतवर्ष आने की पुकार आई। पैगंबर ने सपने में उनसे कहा कि परमात्मा ने भारतवर्ष को तुम्हारे हाथों सौंपा है, जहां जाकर अजमेर में बस जाओ। परमात्मा की कृपा से और तुम्हारे तथा तुम्हारे शिष्यों के पुण्य बल से इस्लाम धर्म का प्रचार उस देश में होगा। पृष्ठ 281। कहा जाता है कि इसके बाद ही वे अजमेर आए और उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई कि हिंदू और मुसलमान समान भाव से उनसे श्रद्धा करते थे और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते थे। पहले पहल जिन्हें उन्होंने मुसलमान बनाया, उनमें एक योगी था जो वहां के राजा का गुरु था। वही पृष्ठ 281। उनके शिष्य परंपरा में ख्वाजा कुतुबुद्दीन और फरीदुद्दीन शकरगंज, जो बाबा फरीद के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे, जैसे सूफी साधकों के नाम आते हैं। भारतवर्ष में आने वाले प्रारंभिक सूफियों के संबंध में बहुत कुछ अज्ञात है, लेकिन उनके बारे में कितनी ऐसी कहानियां प्रचलित हैं जो संभवतः कालक्रम से गढ़ ली गई हैं। फिर भी उनसे इतना तो पता चलता है कि बहुत पहले से वे वहां आए थे और उनके प्रति लोगों में एक गहरी श्रद्धा का भाव था। एक बाबा रतन की कहानी ऐसी ही है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 700 वर्षों तक जीवित रहे। कहा जाता है कि दो बार उन्होंने मक्का की यात्रा की थी। बाबा रतन हिंदू थे और दोबारा जब वे मक्का गए, तब इस्लाम धर्म में दीक्षित हो गए। बीबी पाक दामनान की पृष्ठ संख्या 411। कहानी भी इसी प्रकार से अतिशयोक्तियों से भरी हुई है। उनके चमत्कारों की कहानी जनता में खूब प्रचलित है। लाहौर में उनके साथ मकबरे एक साथ बने हुए हैं। कहा जाता है कि इनमें 6 तो हजरत अली के परिवार की थी। उनके नाम यो हैं। 1. रुकिया, जो बीबी हाज के नाम से मशहूर हैं और जो अली की लड़की थी। 2. बीबी हूर। 3. बीबी नूर। 4. बीबी गौहर। 5. बीबी ताज। 6. बीबी शाहबाज। बाद की 5 अली के भाई अकील की लड़कियां थी और 7वीं उनकी रसोई पकाने वाली थी, जो बीबी तन्नूर अथवा तंदूर कहलाती हैं। उनके संबंध में जो कहानी प्रचलित है वह इस प्रकार है। करबला के मैदान में जब यजीद की सेनाओं ने हुसैन को घेर लिया, तब हुसैन ने इन सातों से उस स्थान को छोड़कर चले जाने के लिए कहा। किसी तरह से जब ये लाहौर पहुंचे, तब वहां के हिंदू राजा ने उन्हें राजमहल में लिवा लाने के लिए अपने बेटे को भेजा। ये लोग जाने को राजी नहीं थी। राजा के लड़के ने जब जिद की, तो उनमें से एक ताज बीबी ने उसकी ओर क्रुद्ध दृष्टि से देखा और वह बेहोश हो गया। होश आने पर उसने माफी मांगी और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। वे राजमहल में तो आ गई, लेकिन बाद में लोगों के व्यवहार से तंग आकर उन्होंने धरती से प्रार्थना की कि वह उन्हें अपनी शरण में ले ले। धरती फटी और वे उसमें विलीन हो गईं। राजा इसके बाद फकीर हो गया और वहां पर 7 मकबरे बनवा दिए। राजा जब मुसलमान हो गया, तब उसका नाम अब्दुल्ला पड़ा। पीछे बाबा खाफी के नाम से वह मशहूर हुआ। कहा जाता है कि इसकी मृत्यु सन 719 720 ईस्वी में हुई और उसकी कब्र भी पाक दामनान मकबरे के पास है। महमूद गजनी ने अपनी चढ़ाई के समय इस मकबरे को घिरवा दिया था और बहुत दिनों बाद अकबर ने उसमें और सुधार करवा दिए। सन ईस्वी की 11वीं शताब्दी के एक दूसरे संत की भी कहानी इसी प्रकार से प्रचलित है। इनका कोई विश्वसनीय वृत्तांत प्राप्त नहीं है। इनका नाम सईद सालार मसूद गाजी मियाँ अथवा बाले मियाँ है। गाजी मियाँ के पिता का नाम सालार साहू और माता का नाम सितरे मुअल्ला था। इनकी माता महमूद गजनवी की बहन थी। कहा जाता है कि गाजी मियाँ महमूद गजनवी के साथ उसकी चढ़ाइयों में थे और बहराइच के पास सन 1033 ईस्वी में लड़ाई में मारे गए। बहराइच में उनका मकबरा है। उनके उर्स के समय मेला लगता है जिसमें हिंदू भी जाते हैं। उस समय जुहरा बीवी के साथ इनकी शादी का उत्सव मनाया जाता है। जुहरा बीवी की कहानी इस प्रकार है। जुहरा बीवी जन्मांध थी। वह बाराबंकी जिले के रधौली गाँव की थी। गाजी मियाँ के मकबरे का वह दर्शन करने गई थी और कहा जाता है कि उनकी कृपा से उसे फिर से दृष्टि शक्ति प्राप्त हुई। गाजी मियाँ की कब्र के पास ही उसने अपने लिए भी कब्र खुदवाई। 18 साल की उम्र में वह अविवाहिता मर गई और उसी कब्र में दफना दी गई। तब से उसके माँ बाप और अन्य रिश्तेदार प्रत्येक वर्ष वहाँ उसका ब्याह रचाने जाया करते थे। धीरे धीरे यह बात सर्वत्र फैल गई और भारतवर्ष के भिन्न भिन्न हिस्से से लोग इस अवसर पर वहाँ इकट्ठा होने लगे। एक लाठी के सिरे पर वे बालों का गुच्छा बांधते हैं और नाचते गाते तथा जुलूस निकालते हैं। इसे वे गाजी मियाँ का सिर कहते हैं। इस अवसर पर लोग भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर चढ़ाते हैं। जुहरा बीबी के दहेज में वे बर्तन आदि चढ़ाते हैं। मकबरे पर लोग रुपया पैसा फेंकते हैं तथा उसके सिरे पर जाकर लगने को वे शुभ मानते हैं। हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों में भी गाजी मियाँ के उर्स होते हैं। समय समय पर गाजी मियाँ का मकबरा धोया जाता है और वह पानी निकट के पोखरे में जाकर गिरता है। उस पोखरे में स्नान करने के लिए बहुत से कुष्ठ रोगी जाते हैं। उनका विश्वास है कि उस पोखरे में स्नान करने से उनका रोग दूर हो जाएगा। पूर्वी बंगाल में गाजी मियाँ का स्थान है जिसकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। वहाँ मेला नहीं लगता। बाबा रतन बीवी पाक दामनान और गाजी मियाँ की कहानी जान ए सुभान की पुस्तक सूफिज्म इट्स सेंट्स एंड श्राइन्स में विस्तार से दी हुई है। पृष्ठ संख्या 413। सईद जलालुद्दीन का नाम भी उस काल के धर्म प्रचारकों में बहुत महत्व का है। सन 1999 ईस्वी में उसका जन्म बुखारा में हुआ। सन 1244 ईस्वी में वह उच्च बहावलपुर रियासत में आकर बस गया। इसने बहुतों को मुसलमान बनाया। उसी का पोता अहमद कबीर था जो मखदूमे जहानिया के नाम से विख्यात है। अबू अली कलंदर एक दूसरा धर्म प्रचारक था जिसका सम्मान आज भी लोग करते हैं। वह पानीपत में आकर रहा और सन 1324 ईस्वी में वहीं उसकी मृत्यु हुई। उसके मकबरे को लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्रारंभ से ही सिंध और पंजाब में ये धर्म प्रचारक और सूफी साधक आते रहे हैं। सिंध में बहुत से सूफी साधक हो चुके हैं और सूफी मत का प्रभाव वहाँ बहुत रहा है। सिंध में सूफी मत के प्रवेश की कहानी बड़ी मनोरंजक है। कहा जाता है कि सैयद उस्मान शाह नामक एक सुप्रसिद्ध सूफी अपने तीन मित्र शेख बहवलदीन, शेख फरीदगंज और शेख मखदूम जलालुद्दीन को अपने साथ भारत में आने के लिए अनुप्रेरित किया। सैयद उस्मान शाह बगदाद के बादशाह के प्रिय पात्र थे। बादशाह उन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। इतना सम्मान और इतने आराम की जिंदगी के बावजूद भी सैयद उस्मान शाह न जाने किस आंतरिक शक्ति से चालित होकर भारतवर्ष में आने के लिए बेचैन हो उठे। बादशाह ने उन्हें बहुत रोकना चाहा पर वे नहीं रुके। उन चारों की यात्रा के संबंध में बहुत सी किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब वे लोग फारस की खाड़ी के किसी टापू में पहुंचे तो उसे बिल्कुल निर्जन पाया। यहां से किसी दूसरी जगह नौका के लिए जाना था। उस्मान शाह ने अपने मित्रों से कहा कि परमात्मा पर भरोसा कर पानी में घुस पड़ो, लेकिन तभी तुम इसको पार कर सकते हो जब संसार के सभी माया मोह का त्याग कर दोगे। अगर किसी प्रकार का मोह तुम्हारे भीतर रह जाएगा तब तुम पार, पृष्ठ संख्या 414, नहीं हो सकोगे। ऐसा कहकर भीख मांगने का अपना पात्र उन्होंने सामने रख दिया और उन लोगों से उस पर हाथ रखे हुए रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से वह भिक्षा पात्र उन सबको पार कर देगा। जब वे लोग बीच धारा में गए तब पात्र डूबने लगा। उस्मान शाह ने कहा कि उन लोगों में से किसी के पास ऐसी कोई वस्तु अवश्य है जिसका लोभ वह छोड़ नहीं सका है। ठीक है ना। बात यह थी कि समय को सुमय का ध्यान रख बहवलदीन ने अपने पास एक सोने की ईंट रख छोड़ी थी। उस्मान शाह के कहने से जब उन्होंने ईंट फेंक दी तो वे फिर ऊपर आ गए और उस धारा को पार करने में समर्थ हुए। इसके बाद वे मक्का और मदीना गए। उनकी यात्रा में एक दूसरा विघ्न आ उपस्थित हुआ। कहा जाता है कि शेख फरीद गंज अत्यंत सुंदर थे। एक दिन वे रोटी खरीदने एक नानबाई की दुकान पर गए। दुकान पर नानबाई की पत्नी के सिवा और कोई नहीं था। वह शेख को देखकर मोहित हो गई। उसने किसी तरह से फरीद को अपने वश में करना चाहा, लेकिन असफल रही। अंत में उसने शोर मचाया और अन्य लोगों के आने पर फरीद को दोषी बनाने लगी। जब शेख उस्मान को यह बात मालूम हुई तो वे अपने चमत्कार बल से अपने मित्र की रक्षा की। इसी तरह से रास्ते में एक साधु ने शेख उस्मान को खौलते हुए तेल में कूदने के लिए ललकारा। उस्मान कूद पड़े और जब वे उसमें से बाहर निकले तो उनके शरीर पर किसी प्रकार का असर नहीं दिखा, सिर्फ उनके कपड़े लाल हो गए थे। साधु ने उनसे कहा, सचमुच तुम लालों में लाल हो। तभी से वे लाल शाहबाज कहलाने लगे। अंत तक ये लाल वस्त्र धारण करते रहे। जब वे सिंध पहुंचे तब उनका स्वागत भी एक विचित्र ढंग से हुआ। उस समय सिंध में बहुत कट्टर मुल्ला अपना प्रभाव जमाए बैठे थे। उन लोगों ने दूध से लबालब भरा हुआ एक कटोरा भेज दिया। उसका मतलब यह था कि तुम लोग यहाँ किस लिए आ रहे हो, यहाँ तो पहले से ही फकीर भरे हुए हैं। तुम लोग किसी दूसरी जगह पृष्ठ संख्या 415 बसेरा लो। उस्मान शाह ने एक फूल दूध के ऊपर रख दिया। ऐसा करने का मतलब उनका यह था कि उन लोगों को किसी सांसारिक वस्तु की चाहना नहीं है, वे फूल की तरह ऊपर ऊपर बहते रहेंगे। सिंध में सूफी मत के प्रवर्तक उस्मान शाह थे। शेख बहवल दीन उच्च चले गए और अन्य दो और दूसरी जगहों में। उस्मान शाह का जन्म 1318 ईस्वी में अफगानिस्तान में भारवंद नामक शहर में हुआ था और 1350 ईस्वी में वे बगदाद से सिंध के लिए चले गए। सूफी मत और सिंध के संबंध में श्री गुरुदयाल मल्लिक की डिवाइन ड्वेलर्स इन द डेजर्ट और श्री जेठमल परसराम गुलराज द्वारा लिखित सिंध एंड इट्स सूफीज पढ़ना चाहिए।